Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Gambhiranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Prempuri Ashram ke Trust ke dwara ye ayojit Vedant ka swadhyaya vibhag mein श्वेता क्षेत्र उपनिषद के रूप में ये स्वाध्याय चल रहा है। अब तो प्रारंभ करना है, है? थोड़ा सा कुछ हो गया बोल रहे थे समझ भर, तो फिर शुरू से मैं करता हूँ, शुरुआत थोड़ा शुरू ही करता हूँ। हाँ, इतनी थोड़ी सी के लिए फिर बीच में जाना अच्छा नहीं लगे। कोई भी उपनिषद में शुरू करने से पहले जो हम मंगलाचरण करते हैं, सहना भवतु सहनो भुनक्तु, इसी से ही ये ज्ञात होता है कि भक्ता और श्रद्धा के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, गुरु और शिष्य की परंपरा क्या है, इसी से ही ये ज्ञात हो जाता है। अब दोनों मिलकर के जंगल में प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम दोनों को रक्षा करें, और ये नहीं कहता है कि आप मुझको रक्षा करें, गुरु नहीं कहता कि आप मुझको रक्षा करें, दोनों मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि हम दोनों को अब रक्षा करें, दोनों में राग द्वेष ना हो, हम दोनों को पालन पोषण करें। इससे इतना गहरा संबंध है भारतीय संस्कृति में, ये गुरु शिष्य परंपरा आगे इतनी समझते हुए यदि हम उस संबंध को, यदि पवित्रता एक पवित्र संबंध को यदि हम रख नहीं पाते हैं, अंदर में कलमश आ जाता है, तो फिर तो जीवन, तो ये जो विद्या जो है, ये विद्या को पहचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पवित्र संबंध थोड़ी सी सास बहू में थोड़ी सी कहें कुछ खटा दिल में आ जाता है, वो कितने बोलने के बावजूद भी बहू नहीं करती है, पिता कितने उपदेश करते हैं, बच्चा जो है अपना लग जाता है काम में, होता नहीं है संबंध पवित्र हो। शुरुआत में लिख रहे हैं संबंध भाष्य में, श्वेता श्वेतर उपनिषद इदम विवरणम अल्प ग्रंथम ब्रह्म जिज्ञासुनाम सुख बोधाय आरभ्यते। ये जो श्वेत श्वेतर जो उपनिषद है, इदम विवरणम, ये जो व्याख्या है, ये व्याख्या अल्प ग्रंथम, छोटा सा ग्रंथ है। ये जो अल्प ग्रंथ रूपी ये जो व्याख्या है, ये किसके लिए है? देखो कितना ये भाष्यकार का एक शब्द ही बहुत काफी हो जाता है समझने के लिए। ब्रह्म जिज्ञासु नाम, ब्रह्म जिज्ञासु हो उन लोगों के लिए सुख बोधाय, सुखे न बोध सुख बोध सुख बोधाय चतुर्थी है, सुख बोध के लिए आरभ्यते यानी आरंभ किया जा रहा है। किसके लिए? ब्रह्म जिज्ञासु के लिए। अब स्टार्टिंग में यदि कोई बता दे कि ब्रह्म जिज्ञासु के लिए ही आरंभ किया जा रहा है, अब हमारा अंदर ब्रह्म जिज्ञासा है या नहीं, अब इतने सारे आप लोग जितने सुने हैं, हम लोग सुने नहीं, इतने ग्रंथ आप लोग सुन चुके हैं, अब देखो कौन आपको बता दिया कि वेदांत परिभाषा जैसे एक नया टाइप का ग्रंथ है जहां न्याय तर्क प्रधान है, ये ग्रंथ है। अब ये ग्रंथ भी सुन लिए, बहुत ही से कम विद्यार्थी होते हैं वेदांत परिभाषा कम सुनते हैं, और इसके जगह में और आप बहुत सरल ग्रंथ था और एक है वेदांत सार है, उसी विषय में कोई अच्छा यदि कोई प्रकाश डाले भी, जो नए नए जो आते हैं आप लोग, उन लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा अभी। तो इसीलिए जो है अब ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा जो है एक बुद्धि वृत्ति है, जिज्ञासा बहुत एक वृत्ति है, एक इच्छा है, ठीक है ना? अब जब इच्छा है, इच्छा तो एक वृत्ति होती है, अब एक बुद्धि वृत्ति है, अब बुद्धि में ऐसे मैं ब्रह्म को जानूं ऐसी की इच्छा एक वृत्ति कब उत्पन्न होती है? सभी के अंदर तो होती नहीं है। आज हम सुनते भी हैं और हमारे अंदर में ब्रह्म जिज्ञासा ऐसे बोल ही नहीं सकते भी, इच्छा भी होती है लेकिन वो इच्छा प्रबल नहीं है क्या? नहीं ना, ब्रह्म जिज्ञासा हम सुनते हैं इसलिए सभी हम ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसी बात नहीं है। संसार में ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जो सेठ बनने के लिए चाहता नहीं है, लेकिन सेठ बनते नहीं है। कौन नहीं चाहता है कि धनी मैं ना बनू, लेकिन धनी बनने की जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा उसके अंदर नहीं होता है। सभी को धनी बनने की इच्छा है। ऐसे ब्रह्म जिज्ञासु तो ठीक है, ब्रह्म विद्या तो सुनते हैं किसी प्रकार हम तो, लेकिन किसी ना किसी परिमाण में परसेंटेज किसी में कम है किसी में ज्यादा है। लेकिन मेरा कहना है ये एक बुद्धिवृत्ति है। अब ये बुद्धिवृत्ति किन लोगों में उत्पन्न होती है, कब होती है? जिन बुद्धि में सूक्ष्मता है, जिन बुद्धि में निर्मलता है, उन बुद्धि में ये ब्रह्म जिज्ञासा साफ दिखाई पड़ती है। समझ गए? सूक्ष्मता तो समझ गए। अब बुद्धि में सूक्ष्मता कब आएगी और ये निर्मलता कब आएगी, तब जाकर वो ब्रह्म जिज्ञास बनता है। इसलिए शास्त्र में कितनी बढ़िया बातें हैं, बार बार बहुत शास्त्र में हर भगवान भाष्यकार भी आगे समझाएंगे। सिद्ध बात है कि जो साधन चतुष्टय संपन्न होता है वो ब्रह्म जिज्ञास होता है। आप तो सब सुन के रखे हैं। अच्छा, साधन चतुष्टय संपन्न यदि कोई व्यक्ति होगा तो उसके अंदर में जरूर सूक्ष्मता होगी और निर्मलता जरूर होगी। अब ये दोनों उपाय है, एक दो चीज है, सूक्ष्मता और निर्मलता है। अब बुद्धि में सूक्ष्मता कब आती है कि जब शास्त्र को हम गहन अध्ययन करते हैं, उसका संग उसका अंग उपांग के साथ, जैसे हम लोग थोड़े पढ़े लिखे होते हैं तो हम लोगों की बुद्धि जैसी सूक्ष्म होती है, इस सामान्य जैसे अनपढ़ है उनकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं होती, उनमें निर्मलता हो सकती है। निर्मलता और सूक्ष्मता दोनों भिन्न चीज है। हम नहीं कह सकते कि हम बहुत अच्छे समझते हैं इसीलिए हमारे अंदर निर्मलता है, ऐसा नहीं होता है। अब और एक बात समझिएगा, स्वच्छ और पवित्र क्या चीज है? जो स्वच्छ है वो पवित्र नहीं है, लेकिन जो पवित्र है वो स्वच्छ है। बता दिए समझ में? मेरा ये कपड़ा गंदे हो सकता है लेकिन पवित्र है। आपके ये कपड़ा आपका स्वच्छ हो सकता है लेकिन पवित्र नहीं हो सकता है, क्योंकि इस कपड़ा में निर्मल साबुन में धो करके साफ करके जाते हैं और लेटरिन जाकर खड़े होकर पेशाब करके आते हैं, ना धोते हैं ना करते हैं उसने। तो ऐसे बहुत जगह है कि जो कपड़ा ऊपर से स्वच्छ दिखाई देगा लेकिन पवित्र नहीं है, और ये गंदे कपड़ा लेकिन ये पवित्र है, ऐसे हो सकता है? ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये मत समझे कि मैं अपने ओर से कह रहा हूँ ऐसा दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन बता रहा हूँ ऐसा। इसी प्रकार जो है कि ये जो सूक्ष्मता और निर्मलता, ये दो चीज जब तक बुद्धि में नहीं होती है तो ये ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती है। अब ये इस सूक्ष्मता को उत्पन्न करने के लिए, बुद्धि में और निर्मलता को लाने के लिए, आपको ये जो शास्त्र को उसका अंग उपांग के साथ आप गहन अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, गुरु सानिध्य में रहकर चिंतन करेंगे, धीरे धीरे बुद्धि में सूक्ष्मता बढ़ती है। बात आगे समझ में? और उसके साथ साथ फिर जो है जो छह कर्म है, नित्य नैमित जो निषिद्ध कर्म जो है, हाँ, और प्रायश्चित, ये जो छह कर्म है उपासना, ये जो छह कर्म है, ये छह कर्म को जो निषिद्ध कर्म को त्याग करके बाकी कर्म को यदि आप यदि निभा रहे हैं कर रहे हैं तो फिर धीरे 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 बुद्धि फिर निर्मल, फिर निर्मलता आएगी। मेरी बात समझ गए? दो प्रक्रिया है, सूक्ष्मता और निर्मलता। निर्मलता जो है आप इस जन्म में हो चाहे जन्मांतर में हो, और किसी की बुद्धि में वो सुनते हैं और तुरंत उस बुद्धि में प्रवेश कर जाती है और फिर जो है जो ब्रह्म जिज्ञासा है उत्पन्न होती है और ज्ञान को फिर पचाता है और चिंतन मनन श्रवण सब बड़े मजा से होता है। और कोई बार 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 सुनता है लेकिन जितने सुनने के बावजूद भी फिर जो है उल्टा ही वो ग्रहण करता रहता है, उल्टा ही ग्रहण करता रहता है। जब प्रश्न उत्तर होता है तो व्यक्ति जब प्रश्न पूछते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि ये क्या क्या ग्रहण करता है। तो समझ लेते हैं कि है, पढ़े लिखे हैं, बुद्धि चलती है, लेकिन निर्मलता नहीं है। तो निर्मलता जो है ये जो आपको जो नित्य नैमित्त ये सब निषिद्ध कर्म ये सब जो कर्म कहा गया है इसको जो निषिद्ध कर्म को छोड़ करके यदि आप शास्त्रीय विधि विधान से यदि आप कर रहे हैं तो ये बुद्धि में निर्मलता आती है और इसको यदि आप गहन अध्ययन करते हैं धीरे धीरे सूक्ष्मता आती है तब जाकर के वो व्यक्ति का अंतकरण जो है नितान्त निर्मल शांत अंतकरण जो फिर उसका अंतकरण जो निर्मल होता है और वो फिर साधन चतुष्ट संपन्न होता है और फिर इसका प्रमाता बनता है जिज्ञासु बनता है। ऐसे जिज्ञासु आप समझिएगा अभी अब कौन कितने अंडर में डुबकी लगाता है अभी अपने अपने को जांच लेना चाहिए और नहीं तो फिर सुनते रहोगे कितने खत्म हो जाएगा लेकिन पचेगा नहीं हो ये तो पक्की बात है। कल मैंने था आश्रम में था एक मेरे एक बहुत अत्यंत एक महात्मा थे कल आए बनारस से आए मिलने के लिए आए थे वो महात्मा बनकर जो मुझको यहाँ बॉम्बे लेकर आए थे महात्मा बनकर के करीब 22 साल हो गए। कल मेरे पास में बैठ गए बता रहे थे कहा इतने साल हो गया और वो भी इसी आश्रम के साथ जुड़े हैं आश्रम की सब सेवा करके फिर बैराग्य आया बैराग्य फिर घर द्वार छोड़ करके सन्यासी बने तो बता रहे थे कि इतने साल से मैं प्रयास कर रहा हूं तीन चीज मुझको सता रहा है क्या क्या है कहा कि भोजन क्यों गृहस्थ में रहकर अच्छा सा खाया पिया आदमी जिया अभी सन्यासी बन कहीं भी जाता है फिर भोजन थोड़ा कहां कुछ होता है तो फिर कमी होता है बस वहां भाग भागना ही होता। फिर दूसरा कहा नींद कहा अब सता रहा कितनी भी कंट्रोल कर रहा हूं लेकिन नहीं हो रहा है। तीसरा कहा स्त्री कामना का क्या बताऊं मैं समझ इतनी लज्जा छोड़कर मुझे जो जब कहे मुझे इतने अच्छा लगा कहा कि इतनी साफ व्यक्ति बता रहे हो कहा कि हमेशा जब मैं नींद सोता हूं तो वही कहीं ना कहीं कोई स्त्री का ही सपने होता रहता है आंख बंद करता हूं क्या क्या कल्पना होता है कहीं ना कहीं कुछ रूप आता रहता है कितना कंट्रोल कर रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा है। अब ऐसे समय में लगता है कि आदमी और 20 साल से दम लग रहा व्यक्ति हरियाणा में जाकर के पूरा सारा व्याकरण क्या क्या पढ़ रहे हैं क्या क्या कर रहे इसलिए इतना ये आसानी नहीं है। सभी प्रकार व्यवस्थित जीवन में रह जाने से हमको लगता है कि हमारे अंदर में कामना नहीं है लोभ नहीं है खाने के लिए इच्छा नहीं है क्योंकि चारों तरफ डिब्बा डिब्बा भरा हुआ रहता है इसमें मिठाई इसमें ये सब भरा हुआ रहता है देखते देखते आदमी तृप्त होता है थोड़ा कुछ खा लिया हो जाता है स्त्री पास में है बैठती है उड़ती है बातचीत करती है हो जाता है तो फिर आपको भोगने की जरूरत नहीं है लेकिन छोड़कर देखिएगा एकांत में जाकर देखिएगा फिर क्या होता क्या है पूरा खरे उतरे ना तो फिर मालूम पड़ता है कि कितने अंदर में कामना होती है खाने की कितनी जिज्ञासा है। तो यही से सब जिज्ञासा को तोड़ ताड़ के व्यक्ति ब्रह्म जिज्ञासु बनता है। उन जिज्ञासुओं के लिए ये जो है सुख बोधक उसको सहज रूप से बोध हो जाए इसलिए यह ग्रंथ को आरंभ किया जा रहा है। चित सदानंद अद्वितीय ब्रह्म स्वरूपोपि आत्मा स्व आश्रयया स्व विषयया अविद्यया स्वानुभव गम्यया साभासया प्रतिबद्ध स्वाभाविक शेष पुरुषार्थ प्राप्त शेष अनर्थ। संबंध भाषी जानते क्या है कितने करीब 50 पृष्ठ है शायद हाँ मैं जाते जाते संबंध भाषा में समाप्त कर पाऊंगा यह पता नहीं मंत्र मेरे लिए एक आ गया तो भूत हो जाएगा लगता है ये अर्थ नहीं है कि मैं 3 पेज की बात शुरू करूं जो कर रहा हूं बात सुनिएगा। तो चित सत आनंद अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप अपि आत्मा स्व आश्रय स्व विषय अविद्या यानी जो चित जो सत और आनंद स्वरूप जो अद्वितीय जो ब्रह्म है वो ब्रह्म स्वरूप अपि आत्मा ये आत्मा ब्रह्म सचिदानंद ब्रह्म स्वरूप होने के बावजूद स्व आश्रयया स्व विषयया अविद्या स्वानुभव गम्यया स्व स्व आश्रय से युक्त, स्व विषय का अविद्या से युक्त, स्व अनुभव गम्य या यानी अपने अनुभूति से गम्य से युक्त जो अविद्या है उस अविद्या से युक्त, ये जो है अविद्या का ही वो विशेषण है। हाँ, और साभास या यानी चिदाभास से युक्त जो जीव है। अब ये एक एक विशेषण को आप व्याख्या करो। हाँ, सच्चिदानंद स्वरूप तो है ये, आप लोग तो सब समझते हैं, अभी इसलिए तो बोल रहे कि इतना आगे हो गया, अगर आगे हो गया मतलब पढ़ के चलो। तो ये जो है स्व आश्रय से युक्त जो है और स्व विषय का अविद्या जो जो अविद्या है, जो अविद्या अपने अनुभूति से गम्य है, सभी जानते हैं मैं अज्ञानी हूं, मैं ये नहीं जानता हूं, सभी को मालूम है, किसी को मालूम नहीं है कि ब्रह्म को कोई जानता है कोई नहीं जानता है, अज्ञान ही या ज्ञानी है इस सभी को। इसलिए जो उसको लिख रहे हैं कि वो जो अज्ञान जो है, जो अविद्या जो है, वो अपने अनुभव से गम्य है, और ये नहीं कि आपसे मुझे गम्य नहीं है, मैं जानता हूं कि मैं मुझे मालूम है या नहीं मालूम, मैं स्वयं खुद में जानता हूं। वो अविद्या किससे युक्त है, अपने अनुभव से गम्य है। ऐसे अनुभव से गम्य जो अविद्या है, स्व विषय का अविद्या है, ठीक। और ये सभी जो तृतीयांत है, तृतीयांत सहयुक्त तृतीया है, यानी इसके इसके साथ युक्त जोड़ देना है, अपने अनुभव से गम्य जो अविद्या है, स्व विषय अविद्या से युक्त है। और ये किसका विशेषण जानते हैं कि ये सभी जो है जीवात्मा का, जीव का ही विशेषण है। हा? और चिदाभास से युक्त है, ठीक। हाँ, अच्छा, जीव को जीव किसको कहते हैं, चलो थोड़ी सी पूछ लेते हैं, चलो प्रकाश बोलिएगा किसको जीव कहते हैं। हाँ, ये साफ है, बाकी जो है अविद्या से युक्त है, ये सब छोटा छोटा टुकड़ा है। चिदाभास बुद्धि, बुद्धिस्त चिदाभास, और ये शरीर, इस पूरा डिपार्टमेंट को यानी इससे युक्त जीव है, यानी तीनों है, एक बुद्धि है और बुद्धिस्त चिदाभास है, ये शरीर है, ये तीनों को मिला करके जीव होता है। सामान्य भाषा है, ज्यादा जैसे सुनते हैं और क्या 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 से जोड़कर बोलते हैं और कुछ ना कुछ गड़बड़ उसी में होता रहता है। जो सरल शब्द है, सरल शब्द से बोल दोगे ना तो कोई जटिल नहीं होता है समझने में। बुद्धि है, क्या बोल रहे हैं, हाँ, बुद्धि में जो चिदाभास है यानी प्रतिबिंब चैतन्य है, माइंड बॉडी एंड सोल, हाँ ये भी एक चलेगा। यदि आप सोल को यदि आप चिदाभास समझेंगे तो फिर ये ठीक है, सोल का अर्थ आत्मा है और आत्मा का अर्थ आत्मा ने अधिष्ठान चैतन्य नहीं लेना है, चिदाभास लेना है, और माइंड का अर्थ हो गया बुद्धि, ठीक है, और बॉडी का अर्थ शरीर हो गया, स्थूल शरीर हो गया, और बॉडी का अर्थ आप यदि सूक्ष्म शरीर ले जाएंगे नहीं चलेगा, फिजिकल बॉडी लेना है, माइंड और फिजिकल बॉडी, और जो है ये सोल है, लेकिन ये जो है ये रिफ्लेक्टेड सोल है, सोल मतलब आत्मा नहीं, हाँ ये प्रतिबिंबित जो चैतन्य है, चिदाभास है। अब सच पूछे इतने आप लोग अध्ययन करते हैं समझते हैं, लेकिन आप इसको भी समझेंगे, चिदाभास समझ रहे हैं, लेकिन किसको कितना दिखाई देता है, कितने ध्यान में थोड़ी सी रह करके उसको आप आत्मसात करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। पढ़ना ये तो चिदाभास ऐसे बोल देंगे तो कोई भी बोल देगा ना, लेकिन वेदांत जो है वो चीज नहीं है। वेदांत तो आपको जब चिदाभास की बात ही आ जाएगी तो आपको चिदाभास को समझने के लिए बैठ करके आधा घंटा एक घंटा बैठ करके कुछ सोचना पड़ता है कि कैसे वो प्रतिबिंब कैसा है, जैसे पूरा आईना में जैसे देखते हैं ना, चिंतन विचार करके उसको देखना होता है, बोलने में क्या रखा है, पढ़ करके समझाने में क्या रखा है, ये तो ये इसको वेदांत नहीं कहते हैं। आप रियली आप समझिएगा आप चीज को। तो ये जो है स्व आभास से युक्त ये जो जीव है, वो जीव कैसा है, प्रतिबद्ध स्वाभाविक का अशेष पुरुषार्थ है। जो संपूर्ण जो पुरुषार्थ है वो संपूर्ण पुरुषार्थ स्वाभाविक से प्रतिबद्ध है। यहां स्वाभाविक से आप ये ले सकते हो, जैसे दूसरी जगहों में जैसे प्रकृति ये सब लिया जाता है, तो राग द्वेष वासना से प्रतिबद्ध है। ये जो तुम्हारा संपूर्ण ये जो ये पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ